ओम शांति। आज के बाबा के मधुर महावाक्य हम सभी ने सुने और उसमें भी बाबा ने हम बच्चों को विशेष यही प्रेरणा दी कि बच्चे कर्मातीत स्थिति जरूर बननी है लेकिन अंत में बनेगी, क्योंकि जब तक ये पतित शरीर है तब तक कोई न कोई कर्म का हिसाब चुकतू करना ही पड़ता है। और जैसे ही आत्मा कर्मातीत हो जाएगी तो उसको तो पावन तत्व का शरीर चाहिए, तो फिर ये पतित तत्व के शरीर को छोड़ देती है। इसलिए बाबा ने कहा कि अंत में ही ये कर्मातीत अवस्था बनेगी। लेकिन कई बार देखा गया कि ब्राह्मण आत्माएं जब इतने सारे शब्द होते हैं ना तो कंफ्यूज होते हैं, और शरीरी, विदेही, कर्मातीत, आत्माभिमानी, देही अभिमानी, फरिश्ता स्वरूप, कौन सी पहले करना चाहिए और कौन सी लास्ट में होगी, तो क्या कहेंगे? कहां से शुरू करें और कहां तक पहुंचना है? तो सबसे पहले कौन सी स्थिति होनी चाहिए? आत्माभिमानी स्थिति। अच्छा, और फिर देही अभिमानी, हाँ, दोनों एक ही है, सब एक ही है, एक तो नहीं हो सकती है, क्योंकि बाबा अलग अलग समय पर ये अलग अलग शब्दों का प्रयोग करते हैं। उसको अगर ध्यान दिया हो कि मुरली में जब बाबा देही अभिमानी कहते हैं तो कब कहते हैं और आत्म अभिमानी कहते हैं तो कब कहते हैं, तो सबसे पहले जो है आत्म स्वरूप में स्थित होना। ये जो बाबा ने योग की यथार्थ विधि बताई कि बच्चे स्वयं को आत्म समझ, देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्म समझ और मुझ बाप को याद करो, बुद्धि का योग मुझ बाप से लगाओ और मुझे याद करो। दूसरी बात जो हम अक्सर मुरली में सुनते हैं वो है मन मना भाव। मन मना भाव और बुद्धि का योग लगाना। पहले दिन हम जब बाबा के पास आते हैं तो आत्मा का लेसन जब हमें मिलता है तो उस आत्मा के लेसन में हमें ये बात पक्की कराई जाती है कि आत्मा की तीन सूक्ष्म शक्ति है, मन, बुद्धि और संस्कार। तो पहले बाबा में किसको लगाएंगे, मन को लगाएंगे या बुद्धि को लगाएंगे? पहले मन मनाभव होंगे तो बुद्धि योग लगेगा या पहले बुद्धि योग लगाएंगे तो मन मनाभव होंगे? पहले बुद्धि योग लगेगा। देखो अभी तक हमें योग क्लियर ही नहीं है, और योग क्लियर नहीं होंगे तो विकर्म विनाश कैसे होंगे? तो कहने का भाव ये है कि मन और बुद्धि दो चीज है। मन का कार्य क्या है? सोचना, संकल्प करना। बुद्धि का कार्य क्या है? योग में निर्णय क्या करना है, योग के लिए निर्णय क्या करना है, ये तो समझ लिया कि हम चेतन शक्ति आत्मा है, ये शरीर है, फिर क्या निर्णय करना है। हाँ, बुद्धि के पास ही तीसरा नेत्र है जो दिव्य चक्षु, क्योंकि बाबा ने एक मुरली में कहा था कि हर ब्राह्मण बच्चे का जन्म होते ही बाबा से दो गिफ्ट मिलती है, एक है दिव्य बुद्धि और दूसरी है दिव्य दृष्टि। दिव्य दृष्टि ट्रांस को नहीं कहा जाता है, दिव्य दृष्टि माना के आत्मा का जो तीसरा नेत्र है, जो ज्ञान को समझने के चक्षु है, वो खुल जाते हैं। तो ये दो गिफ्ट बाबा से हमें मिलती है, दिव्य बुद्धि जो गुह्य से गुह्य ज्ञान की बातें हैं उसको समझने की बुद्धि मिली, जिसके लिए बाबा ने आज भी कहा कि अमीर लोग बाबा को नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनकी बुद्धि कहाँ है, धंधे में है बुद्धि, पैसे में लगी हुई है, तो वो नहीं समझ पाते हैं क्योंकि उनके पास ये गुह्य रहस्य समझने वाली बुद्धि नहीं है। दूसरी बात के दिव्य दृष्टि अर्थात जो चीज इन आंखों से नहीं दिखाई देती है उसको देखने की क्षमता या शक्ति बाबा से हमें प्राप्त हुई है वरदान के रूप में। जैसे आत्मा को इन आंखों से नहीं देख सकते हैं लेकिन अंतर चक्षु से हम समझ करके देखते हैं कि आत्मा ज्योति स्वरूप बिंदु है, परमात्मा को ये चक्षु से नहीं देख सकते लेकिन हम ज्ञान के दिव्य चक्षु से ये देख सकते कि परमात्मा ज्योति स्वरूप है। परमधाम को ये चक्षु नहीं देख सकते लेकिन अब ज्ञान के आधार पर हमने ये बात को अच्छी तरह से विजुअलाइज कर सकते कि हाँ, इस पृथ्वी से ऊपर सूक्ष्म वतन और सूक्ष्म वतन से भी ऊपर परमधाम है, कैसा दिव्य लोक है जहां दिव्य प्रकाश छाया हुआ है और वहां परमात्मा। तो जो चीज ये आंखें नहीं देखती है वो दिव्य चक्षु से हमें दिखाई देते हैं, जो योग में हम यूज करते हैं, और दिव्य बुद्धि से उस बात को समझा हमने पहले, परमधाम क्या है, ये चक्र कैसे फिरता है ना, ये सब कुछ समझ में आया, तब हम चक्षु से देख सकते हैं। इसीलिए बाबा ने योग की यथार्थ विधि यही बताई कि देह सहित देह के सर्व संबंधों को भूल, अपने को आत्मा समझ, बुद्धि का योग मुझ बाप से लगाओ, यानी वो दिव्य बुद्धि रूपी चक्षु से जो हम शिव बाबा को देख सकते हैं, आत्मा को देख सकते हैं, तो जब हम अपने बुद्धि को बाकी सब बातों से फ्री करके मैं आत्मा ज्योति स्वरूप, आज वरदान में था ना ब्रुकुटी की गुफा में, क्या कहा बाबा ने, ब्रुकुटी की गुफा में बैठ करके तपस्या करनी, तो जैसे मैं ब्रुकुटी की गुफा में बैठ करके उस परमात्मा को याद करती हूँ, है ना? तो ये बुद्धि का योग है, और जब इस तरह से हम आत्म स्वरूप में स्थित होकर के बुद्धि का योग बाबा से लगाते हैं अर्थात वो विजुअलाइजेशन करते हैं, तो उसको कहते हैं आत्म स्वरूप में स्थित होना। आत्म स्वरूप में स्थित होने के बाद आत्म अभिमानी बनना, है ना? आत्म अभिमानी किसको कहा गया है? तो अगर मैं आपको एक बात पूछूं कि कोई व्यक्ति देह अहंकार में है, बहुत अहंकार में है, वो कुछ बोलता नहीं है, आपके साथ में आकर के, आपके सामने आकर के भी कुछ बोलता नहीं है, ऐसे खड़ा होता है, लेकिन आप उसको देखकर कहेंगे बड़ा अहंकारी है। कैसे पता चला अहंकारी है? ये कैसे पता चला? उसने तो कुछ बोला ही नहीं है, तो कैसे पता चला आपको? ऐसा क्या था हाव भाव में, ऐसा क्या था हाव भाव में जो आपको पता चला ये अहंकारी है? क्या था वाइब्रेशन में? वही वाइब्रेशन में क्या आया आपको जो उसने तो बोला ही नहीं कुछ भी, फिर क्या वाइब्रेशन आया आपको? आंखों से पता चला। अच्छा, आंखों में क्या आया? चेहरे और चलन से पता चला। वही मैं पूछ रही हूं, है एक्टिविटी में क्या था? वो तो आके खड़ा हो गया, बस कुछ बोला भी नहीं उसने, आके खड़ा हुआ या कहीं बैठा है और आपने देखकर कहा बड़ा अहंकारी लग रहा है। कैसे पता चला? उसने कुछ बोला नहीं, बैठा हुआ है इंसान, हैं? वही वाइब्रेशन में क्या आया? सूरत से क्या दिखाई दिया? वही आपने खुद सोच लिया, यही कहेंगे। और हमारी मैनेजमेंट में एक थियरी है, मैनेजमेंट में थियरी आती है, जब हम मैनेजमेंट ट्रेनिंग कराते थे ना, तो उसमें एक थियरी आती है, प्रोजेक्शन एंड रिफ्लेक्शन थियरी उसको कहते हैं, कि आप दूसरों में कभी कभी अपना रिफ्लेक्शन देखते हैं। तो वो व्यक्ति बैठा है और आप कह रहे हैं ये अहंकारी है, कहीं आपका रिफ्लेक्शन तो नहीं है? हाँ, कि आप वही प्रोजेक्ट करेंगे दूसरे में, आपका खुद का रिफ्लेक्शन। तो कैसे पता चला ये अहंकारी है? मैं वही पूछना चाहती हूं। देह अभिमानी है, ये बड़ा देह अभिमानी है, कैसे पता चला? हाँ, उसने तो व्यवहार कुछ किया ही नहीं है? माना आपका रिफ्लेक्शन था, उसका नहीं था। आप आत्म अभिमानी नहीं थे, मतलब आप देह अहंकार में थे, इसलिए आपको वो दिखाई दिया कि वो देह अहंकार में है, माना वो देह अहंकार में नहीं था। क्या कहेंगे? वो देह अहंकार में नहीं था, आप थे, इसलिए आपको दिखाई दिया। ये समझने की बातें हैं, बहुत गहराई के साथ समझने की बात है, कि जब हम देह अहंकारी कहते हैं किसको, तो जो पांचों विकार है बड़े बड़े वो, या जो सूक्ष्म उसके बाल बच्चे हैं, वो वाइब्रेशन निकालता है, वो धुआं निकालता है। जैसे कोई चीज होती है ना, तो उसका धुआं निकलता है, तो वो वाइब्रेशन कहेंगे ना उसका। तो ठीक इसी तरह कोई न कोई विकारों की, कमजोरी की जब वो प्रकंपन निकलते हैं, वो आपको देख रहा है, वो सोचता है ये तुच्छ है, उससे क्या बात करूं मैं, तो उसके ये देखने के जो हाव भाव है ना, जिसमें उसने आपको तुच्छ समझा, तो वो वाइब्रेशन, तो कोई ना कोई बुराइयों के वाइब्रेशन जब निकलते हैं, तो उसको कहते हैं अहंकारी है। उसके हाव भाव से, चाल चलन से, बोल चाल से, या चेहरे से वो भाव निकलते हैं, वो वाइब्रेशन निकलते, उसको कहा कि देह अहंकारी है ना। किसी तरह आत्मअभिमानी माना क्या? आत्मअभिमानी माना आत्मा के जो सात गुण है उसका शुद्ध नशा, शांत स्वरूप, तो शांति का एक नशा, वो वाइब्रेशन निकलना, फिर सुख का, आनंद का, प्रेम का, ये सातों गुणों का जो शुद्ध नशा है उसको कहते हैं आत्म अभिमानी। उस कॉन्शियसनेस में है। तो जब हम योग में बैठते हैं, आत्मस्मृति में स्थित होकर के जैसे बैठे, तो आत्मस्मृति में बैठने से देह देह के संबंध भूल गए, उसके बाद मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं तो नहीं करेंगे। लेकिन आत्मा का जो शुद्ध स्वरूप है उसके नशे में स्थित होना, एकदम मन शांत हो जाए और वो शांति के प्रकंपन, वो वाइब्रेशन निकले, प्रेम के वाइब्रेशन निकले, आनंद के वाइब्रेशन निकले, और जितनी देर आप उस स्वरूप में स्थित हो सकते हैं, तो ये बाबा कहते हैं बहुत काल का अभ्यास। बहुत काल का अभ्यास जरूरी है। ये नहीं कि अभी जोड़ा, अभी टूटा, अभी जोड़ा, अभी टूटा, अभी जोड़ा, फिर टूटा, इसको बहुत काल नहीं। कितना समय तक आपका वो स्वरूप में स्थित होना रहता है? 5 मिनट रहता है, 10 मिनट रहता है, आधा घंटा रहता है, 1 घंटा रहता है। तो 1 घंटा या आधा घंटा भी अगर उस स्वरूप में आप रहे, आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बनकर के रहे, तो उसको कहते हैं हाँ, इतना काल का अभ्यास है। जितना ये काल बढ़ता जाएगा प्रैक्टिस से, तो अंतिम समय ये अभ्यास आपको मदद करेगा, है ना? क्योंकि अंतिम समय के ऊपर ही तो सारा खेल है। बाबा ने पहले ही बता दिया कि अंतिम समय जो पेपर आएगा, पेपर भी कौन सा आएगा वो भी बता दिया है। कौन सा आएगा? सबके लिए नष्ट मुहा नहीं, बाबा ने कहा है जिस कमजोरी को आपने पाल के रखा है कि अंत तक ठीक हो जाएगी, वही पेपर का आने का द्वार होगा। अगर मोह है तो मोह पेपर का द्वार बनेगा, अगर क्रोध है तो क्रोध पेपर का द्वार बनेगा। कईयों को मोह नहीं होता है लेकिन क्रोध बहुत होता है, गुस्सा बहुत होता है, वही पेपर का द्वार बनेगा, है ना? तो अंतिम पेपर कौन सा होगा? हर एक की जो कमजोरी है, इसलिए बाबा कहते कोई कमजोरी नहीं रहनी चाहिए। जिसको आपने अभी तक ये समझा है कि ठीक हो जाएगी, ये तो बहुत छोटी है, वो अंतिम समय बहुत बड़ी होकर के सामने आए, विस्फोट होकर के सामने आएगी। और वो पेपर आएगा और उस पेपर को देने का समय कितना होगा? 1 सेकंड। इसलिए अगर 1 सेकंड में मुझे अभ्यास है कि 1 सेकंड में आत्मस्वरूप में स्थित हो जाऊं, बस 1 सेकंड लगता है। आपको याद होगा 2007 से हर साल बाबा ड्रिल कराते थे मुरली के बाद, और बाबा कहते थे बस अब 1 सेकंड में स्थित हो जाओ, अशरीरी हो जाओ, 1 सेकंड में आत्म अभिमानी बन जाओ। तो 1 सेकंड लगता है या 1 मिनट लगती है? क्योंकि 1 मिनट भी लगेगी तो भी फेल हो जाएंगे। 1 सेकंड, 1 सेकंड कहा माना, जैसे ही पेपर आया माना, परिस्थिति ऐसी आई जो क्रोध दिलाने वाली हो, और उस समय आपने इतना कंट्रोल करके मैं आत्मा शांत स्वरूप एक सेकंड में पास हो जाएंगे। अगर एक मिनट भी लगी फेल हो गए। इसलिए बाबा ने कहा माला नहीं बनती है, अंत समय माला बनेगी। जैसे जैसे पेपर आएगा आपका और उसमें पास फेल कोई देगा नहीं। यहां पर ये यूनिवर्सिटी ऐसी है जहां पर पेपर चेकिंग करने वाला कौन है? स्वयं है, स्वयं है कि उस समय जब जैसे ही संकल्प आया फेल हो गए महसूसता होगी और आपके अंदर से निकला फेल हो गए खाली संकल्प में ही, माना आपने खुद को रिमार्क दे दिया फेल पास है ना। पास होंगे तो खुशी होंगी, पास हो गए हम तो पास हो गए। तो चेकिंग करने वाला कौन? स्वयं। मार्क देने वाला कौन? स्वयं। और से पेपर का टाइम कितना? एक सेकंड। पेपर कौन सा है ना। अब इतना सब कुछ मालूम होने के बाद भी अगर फेल हो जाए तो क्या कहेंगे, क्या कहेंगे? और जो पास विथ ऑनर होंगे उसके चेहरे पर ऐसी खुशी, ऐसी संतुष्टि होंगी। जब कोई पास हो जाता है तो कैसी खुशी होती है, और फेल हुआ तो एक सेकंड के लिए भी चेहरे पर क्या आएगा, सिकन जाएगी कि नहीं? एक बच्चा अगर फेल हो जाता है स्कूल में तो उसके चेहरे पर आएगा कि नहीं आएगा? तो जैसे ही हम फेल हुए तो हमारे चेहरे पर भी जो आएगी वही तो हमारा जैसे स्कैन हो जाता उस समय, स्कैन हो करके तो भाई मिल गया आपको रिजल्ट, ये चेहरा देख लो संतुष्टि का है, पास विथ ऑनर वाला है, कौन सा है चेहरा देख लो आप। तो इसीलिए बाबा कहते मुझे जरूरत नहीं है कि चेकिंग करने की कि ये पास हुआ ये फेल हुआ, उसका जो चेहरा स्कैन हो जाएगा वो उसके सामने आएगा, वो कहेगा फेल हो गया मैं। यहां तो दो ही है भाई, 35% या 60% या परसेंटेज भी नहीं होंगी, पास या फेल ये आपके हाथ में है। इसलिए जितना बहुत काल का अभ्यास होगा, बहुत बार ये प्रैक्टिस की होगी, इसलिए बाबा ने हमें ड्रिल में भी कहा साकारी आकारी निराकारी आना जाना करो। तो जितना एक सेकंड में आना जाना करने का आपको प्रैक्टिस होगी तो उस समय भी एक सेकंड में निराकार स्थिति में स्थित हो जाओ, है ना, एक सेकंड में, और आप पास हो जाएंगे। जितना ये बहुत बार बहुत काल का अभ्यास किया होगा, बहुत बार दिन में कितनी बार, इसलिए ट्रैफिक कंट्रोल क्या हर घंटे पर जो, तो ये क्यों बाबा ने सिस्टम निकाली, ताकि हमारी प्रैक्टिस बहुत काल की हो जाए। इसलिए शुरू में तो बहुत अटेंशन रहता था, लेकिन अब तो ट्रैफिक कंट्रोल बचता है तो भी कई लोग नींद आ जाती है ट्रैफिक कंट्रोल में भी। क्यों? क्योंकि वो अटेंशन की कमी है, अटेंशन की कमी। इसीलिए तो आत्मा अभिमानी माना आत्मा के सातों गुणों का स्वरूप बन जाना, उसको कहते हैं आत्म अभिमानी स्थिति। अच्छा, देही अभिमानी किसको कहते हैं? देही अभिमानी किसको कहते हैं? कर्म करते समय आत्मा समझकर कर्म करना, और देह में रहते हुए देह से अलग कैसे हो जाएंगे, देह से अलग कर्म करते हुए ऐसा है। देही अभिमानी उसको कहते हैं कि कर्म में आए आप तो इंद्रियों को तो यूज करेंगे ना। आत्म अभिमानी होना माना कर्मेंद्रियों को भी समेट करके जब योग में बैठते हैं तो कोई कर्मेंद्रिय को यूज नहीं करते हैं, इसीलिए आत्म स्वरूप में स्थित होना स्वाभाविक है। लेकिन सारा दिन तो उसमें नहीं रहेंगे, कर्म तो करना है, कर्म योगी बनना है। बाबा ने कहा, पिछली मुरली में भी बाबा ने क्या कहा था, ब्रह्मा बाबा ने भी अंतिम समय तक कर्म किया, लास्ट में मुरली सुना करके गए, है ना, देह छोड़ा एक घंटे पहले भी कर्म किया। तो कर्म तो अंतिम घड़ी तक करना है, कर्म से डिटैच होकर के तो बैठ नहीं सकेंगे कि भाई अब मैं बैठ जाऊं, अब मैं शरीर छोड़ू, ऐसा तो होगा नहीं। कर्म करते करते ही चलते चलते शरीर छूटने वाला है, रास्ते में ही छूटेगा, कभी कहां होगा, कहां छूटेगा, है कि नहीं। तो इसीलिए जब देही अभिमानी होकर के कर्म करना है, माना मैं आत्मा मालिक बनकर के ये इंद्रियों का प्रयोग कर रही हूं, हाथों का प्रयोग कर रही हूं, चल रही हूं तो पैरों का, मैं आत्मा मालिक हूं। और अगर आत्मा अभिमानी बने हैं तो आत्मा का जो सातों गुणों का स्वरूप बने, तो जब आप कर्म में आते हैं तो वो सातों गुणों का वाइब्रेशन फैलने लगता है हर इंद्रियों के द्वारा, क्योंकि जिन इंद्रियों का प्रयोग कर रहे हैं तो उस समय वो वाइब्रेशन उस इंद्रिय के द्वारा भी प्रवाहित होते हैं। उसको कहते हैं देही अभिमानी स्थिति। चल रहे हैं तो जैसे देवताओं की चाल, जैसे मम्मा के लिए नहीं कहते कि मम्मा जब चलती थी तो जैसे धरनी को भी दर्द न हो, दुख न हो, ऐसे मम्मा चलती थी। ऐसे नहीं धप 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 धप, पता नहीं इतना धरती को भी जैसे तो कष्ट दे रहे हैं, तो उसको देही अभिमानी नहीं कहेंगे। देही अभिमानी माना वो शांति हमारे चलने में भी, बोलने में भी। जैसे दुनिया में भी किसी को बहुत मीठा बोलते तो क्या कहते हैं, ये तो जैसे देवताओं के जैसे बोलते, मोती झरते हैं, कहते हैं कि नहीं कहते, मोती जैसे मुख से झर रहे, लिमिटेड शब्द, बहुत कम शब्द बोलते हैं। अगले संडे की मुरली मैं आज पढ़ रही थी, अगले संडे की मुरली बाबा ने पूरी बोल के ऊपर चलाई है, पांच प्रकार के बोल, एक तो हंसी मजाक, एक तो टॉन्टिंग वे में, है ना, एक तो किसी की निंदा ग्लानी करना और अपना सर्कल बना लेना, और बाबा ने उसको कहा जैसे वो शास्त्रवादी होते ना, रामायण की कथा करने बैठ जाते हैं और इतनी इंटरेस्टिंग चटपटी चटनी डाल करके बनाते हैं, ऐसे कईयों का होता है, है ना, चटपटी, तो चटपटी बातें बाबा ने बोल के ऊपर ही सारी मुरली चलाई है। तो देही अभिमानी के बोल भी कैसे होंगे, निर्माणता, नम्रता, मधुरता, ये जैसे प्रवाहित होने चाहिए, शांति, प्रेम, हाँ, ये सब जैसे उसमें से प्रवाह, उसको कहते, जैसे देह अहंकार वाला क्रोध करता है, ईर्ष्या, द्वेष, तो कहेंगे बड़ा अपने आप को अभिमानी समझता है, दूसरे को जैसे कुछ समझता ही नहीं है, है ना, तो वो वाइब्रेशन आते हैं ना। ऐसे देही अभिमानी कर्म करते हुए अगर किसी से बोल नहीं रहे हैं तो भी उससे इतने स्वीट वाइब्रेशन आएंगे जो लगेगा ये तो जैसे देवता है, कोई खतरा महसूस नहीं होगा, है ना, ये कोई नुकसान पहुंचाएगा नहीं, ये जैसे देवता है। ये है देही अभिमानी स्थिति कर्म करते समय। आत्माभिमानी स्थिति योग में बैठते समय, समझा, ये अंतर है। अच्छा, उसके बाद फरिश्ता स्थिति और अव्यक्त स्थिति में क्या अंतर है, और हमें क्या बनना है, अव्यक्त बनना है, फरिश्ता बनना है, या अव्यक्त फरिश्ता बनना है। तो अव्यक्त फरिश्ता किसको कहते हैं, अव्यक्त माना एक है व्यक्त, व्यक्त शब्द से व्यक्ति शब्द निकला है, तो अव्यक्त माना ये देह के भान से अपने आप को ऊपर करना। तो जितना देही अभिमानी आत्माभिमानी प्रैक्टिस होंगी तो देह के भान से अव्यक्त, व्यक्त भान से अव्यक्त ऊपर न्यारा सहज होगा। और अव्यक्त फिर क्या बनेंगे? तो फरिश्ता। फरिश्ता माने एकदम लाइट, हल्का, हल्केपन में आकर के जैसे चल रहे हैं तो भी एकदम हल्कापन, कर्म कर रहे हैं तो भी हल्कापन, जैसे यहां है नहीं, जैसे बुद्धि से कहीं और है। जैसे ब्रह्मा बाबा के लिए बताते थे दादियां कि बाबा के पास जाते थे बात करने के लिए, समाचार सुनाते थे, लेकिन ऐसा लगता था जैसे बाबा है ही नहीं यहां। अव्यक्त फरिश्ता है ना। तो इतनी लाइटनेस थी बुद्धि की, जो एक सेकंड में बाबा जैसे विश्व का चक्कर लगाकर बुद्धि से आ जाता। दादियां पूछती थी, बाबा हमने समाचार सुनाया, आपने सुना? बाबा सार सुना देता था कि हाँ बच्ची ये बात सुनाई, तो सार भी सुना दिया, लेकिन बुद्धि इतनी न्यारी उपराम, उसको कहते अव्यक्त फरिश्ता। जिस फरिश्ता स्थिति से हम भ्रमण करते हैं, कोई बीमार है तो उसको जैसे सकाश देके आते हैं। ब्रह्मा बाबा जैसे करता था कि कोई बाबा ने, कई माने कहते थे बाबा को सारी रात नींद नहीं, बाबा ने सकाश दिया। जैसे विश्व किशोर भाऊ के लिए बताते हैं अनुभव कि विश्व किशोर भाऊ बाबा का बहुत फेथफुल बच्चा बाबा को, और जो है इतना ऑनेस्ट बाबा का बच्चा, वो जब बीमार हुए थे तो उनको हॉस्पिटल बॉम्बे में रात भर इतनी तकलीफ थी, तो बाबा ने रात भर बैठ करके जैसे बुद्धि बल से वहां जा करके उसके सामने सकाश देते रहे उसको, और वो चैन से सोया। यहां बाबा नहीं सोए, वो सो गया। और फिर उसने दूसरे दिन बाबा को सुनाया कि हाँ बाबा मैं सारी रात आराम से सोया, क्योंकि मुझे जैसे लग रहा था कोई ताकत दे रहा है। तो बाबा ने यहां से जो प्रयोग किया वो वहां उसको, तो ये है फरिश्तों का, कि फरिश्ते से हम भ्रमण करते हैं। निराकारी स्थिति में भ्रमण नहीं होता है, आत्माभिमानी स्थिति में भ्रमण नहीं होता है, देही अभिमानी स्थिति में खाली आप जहां है वहां कर्म कर रहे हैं, लेकिन अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप, अव्यक्त इस देह से हम डिटैच होकर के उस फरिश्ते देह में अपने आप को एकदम लाइट का जैसे स्वरूप है हमारा, उस स्वरूप में आप भ्रमण करते हैं, दुनिया की आत्माओं को सकाश देने का काम करते हैं, दुनिया की आत्माओं को शक्ति प्रदान करते हैं, कहीं अशांति है तो शांति के वाइब्रेशन देते, वो फरिश्ता स्वरूप द्वारा। समझा? मिलन मनाना है बाबा से तो अव्यक्त फरिश्ता होकर के सूक्ष्म वतन में मिलन मनाते हैं, बाबा से बात करते हैं। तो ये देह तो यहीं होती है, लेकिन हम कैसे बाबा से और कई बार महसूस होता है बाबा ने ये जवाब दिया मुझे, मैं पता चलता है ना, तो और उसको कंफर्म करने के लिए तो दूसरे दिन मुरली के अंदर वही बात बाबा की आती है, तो लगता है कि हाँ मेरी जो बाबा की टचिंग थी ना सही थी। आता है कि नहीं आता है? ये है अव्यक्त फरिश्ता स्वरूप। व्यक्त स्वरूप नहीं है, ये व्यक्ति वाला स्वरूप नहीं है, हार्ड मास वाला स्वरूप नहीं है, अव्यक्त उससे परे लाइट का स्वरूप। और फरिश्ता, फरिश्ता जैसे उड़ता हुआ घूमता है, दुनिया की आत्माओं को सकाश देता है, किसी को जैसे आप जाकर के वाइब्रेशन दे के आते हैं, शक्ति प्रदान करते हैं, शांति प्रदान करते हैं। कोई हॉस्पिटल में दुखी है, कोई कहते आज आप हमारे लिए योग करना, तो कैसे करते हैं? कि आप फरिश्ता हो करके जैसे उसको सकाश दे के आते हैं, उसके लिए योग करते हैं वतन में जाकर के बाबा के पास, बाबा को कहते हैं बाबा ये आत्मा का दुख दर्द है, उस दुख दर्द से वो मुक्त हो जाए, तो ये है उसके लिए योग किया आपने। फिर बाबा उसको संभाल, ये मेरा बच्चा है इसलिए मैं योगदान, नहीं, मेरा जहां आएगा ना, मेरा जहां आएगा कहां क्या होगा, नहीं कट हो जाएगा, वो वाइब्रेशन पहुंचेगा नहीं, मेरा नहीं, लेकिन ये भी बाबा का बच्चा है, सभी बाबा के बच्चे हैं। बेहद की भावना रखो, फरिश्ता के लिए मेरा नहीं होता है, आप जैसे ही मेरा कहेंगे ना उस फरिश्ते स्थिति से नीचे आ जाएंगे, फरिश्ता माना सबके लिए, और इसीलिए जो आत्मा जहां भी है उसको बाबा के सामने वतन में इमर्ज करके बाबा से शक्ति दिलाओ, बाबा से मेरा है ये नहीं, बाबा ये भी आपका बच्चा है। जब बेहद की भावना आ गई तो बाबा की शक्ति का वाइब्रेशन उसको मिलेगा। कई लोग कहते हैं ना भाई मैं कितना समय से योग कर रही हूं लेकिन मेरे पति का बुद्धि का ताला खुलता ही नहीं है। अब जहां मेरे पति का ताला खोल तो क्या हुआ, उसका खुलेगा कभी? हाँ, मेरा आया ना, मेरा आया तो समाप्त हो गया, वहां वो कनेक्शन ही कट हो गया। इसलिए मेरा समझ के कभी नहीं करो, बाबा भी कहते हैं ये समझ के करो कि ये भी बाबा का बच्चा है ना। बहुत मेरा पति मुझे टॉर्चर करता है, मेरा पति मुझे ऐसा करता है, बंधन डालता है, ये है, बाबा कहते जब मेरा आया तो वहां कनेक्शन ही नहीं होगा, इसीलिए ये भी बाबा का बच्चा है। इतना प्यार से उसको प्रति शुभ भावना प्रदान करो, उसको इतना सुंदर वाइब्रेशन दो, देखो परिवर्तन होता है कि नहीं होता है। मेरा समझ के नहीं करना कभी भी। इस जन्म में आपका पति बना है, वो भी 10 साल 15 साल उससे ज्यादा तो नहीं, उसके पहले तो आप दूसरे जन्म में दूसरे चोले तो कोई और पति था या और पत्नी थी, तो कितने 84 जन्म में 84 पति मिले कि नहीं मिले, तो यही मेरा क्यों, समझ में आई बात बाबा, यही मेरा क्यों, ये तो मेरा इस जन्म का 10 साल का पति है बस। बराबर है कि नहीं है? तो बस ये भी बाबा का बच्चा है और ये भी बाबा का बच्चा है, तो ये बाबा इस आत्मा का भी कल्याण हो, यही मेरी शुभ भावना शुभकामना। और इस तरह से आप देंगे ना, कैसे उसकी बुद्धि चेंज नहीं होती है, देखो आप प्रयोग करके देखो, मेरा कहकर नहीं, ये अटेंशन रखना है, मेरा नहीं कहना है, बाबा का बच्चा है और बाबा उसकी बुद्धि ठीक करेगा, आप ही ठीक हो जाएगा, है ना। फिर देखो कितना सुंदर आपका हिसाब बनने लगेगा, उसका मना कर्मों का खाता नहीं बनेगा, जो हिसाब होगा ना पिछला वो भी इतना सहजता से, क्योंकि कोई भी नेगेटिव हिसाब को नेगेटिव होकर के नहीं काट सकते, वो बढ़ेगा, इसलिए नेगेटिव हिसाब को काटना है तो पॉजिटिव होकर के शुभ भावना, ये बाबा का बच्चा है, बहुत अच्छा बच्चा है, बहुत अच्छा, आप ऐसे करते वाइब्रेशन उसको देते जाए, सचमुच वो अच्छा बन जाएगा, अच्छा बन जाएगा, समझा बात। ये अव्यक्त फरिश्ता था, उसके बाद विदेही, विदेही माना, अच्छा विदेही और अशरीरी में क्या अंतर है, हा? विदेही और अशरीरी में अंतर है कि नहीं है, है क्या अंतर है, पता ही नहीं, हा? हाँ? बोलू तो गलती होता है ऐसा नहीं होता है। देखो, राजा जनक विदेही था या अशरीरी था?
विदेही था,
है ना। विदेही का मतलब क्या है कि राजा जनक की तरह घर में रहना है, व्यवहार निभाना है, कारोबार करना है, लेकिन सब कुछ करते हुए अटेंशन कहाँ हो। जैसे वो सन्यासी आकर के राजा जनक का कहता है, मैंने सन्यास कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, फिर भी मेरा मन भगवान में नहीं लगता है, मैं कैसे मानूं कि तुम इतना वैभव में रहता है, सब कुछ कारोबार करता हो, तुम विदेही कैसे हुआ। तो कहा, ठीक है, तुम एक काम करो, बहुत अच्छा विषय लेकर आया है, बैठ के चर्चा करने जैसा, लेकिन मैं तब तक थोड़ा कारोबार पूरा कर लूं, फिर तुम्हारे साथ बैठूंगा। तब तक तुम क्या करेगा? तो तुम ऐसे करो, महल का चक्कर लगा के आओ, देख के आओ, अवलोकन करके आओ महल को। लेकिन कहा, मेरा एक साइड का महल जो है ना, वो भी बन रहा है, बहुत सुंदर कारीगरी हो रही है, लेकिन वहां लाइट नहीं है, तो तुम ये दिया लेकर के जाओ और उस प्रकाश से तेरे को सारा कारीगरी सारी देखने को मिलेगी। लेकिन ध्यान रखना, क्योंकि अभी खिड़की दरवाजे भी लगे नहीं है और वही हवा की दिशा है, तो दिया बुझ नहीं जाना चाहिए। कहा, ठीक है। सन्यासी ने कहा, तब तक मैं महल को देख के आता हूं। वो दिया लेकर के गया महल देखने के लिए। तब तक राजा ने भी अपना कारोबार पूरा करके आ गए, वो भी आ गया, पूछा, तुम देख के आए महल? बोले, हाँ देख के आए। कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। कारीगरी कैसी थी? बहुत अच्छी थी। बोले, ध्यान कहाँ था? बोले, वो तो दिए पर था। समझा ना। तो राजा जनक ने कहा, बस मैं भी ध्यान आत्मा पर रखता हूं कि मुझ आत्मा से कोई भी ऐसा कर्म नहीं होना चाहिए, अटेंशन, जिसको बाबा कई बार बोले, सावधान, अटेंशन, यह विदेही, कि देह से कर्म कर रहे हैं लेकिन हर कर्म के ऊपर अटेंशन, यह है विदेही स्थिति। रहना भी वहां है, कर्म भी करना है, कारोबार भी करना है, व्यवहार भी करना है, लेकिन अटेंशन आत्मरूपी दिए पर। हर कर्म करते आत्मरूपी दिए पर जब अटेंशन है, तो उसको कहते हैं विदेही। देह में होते हुए भी देह से अलग, और अशरीरी माना परमधाम जाना। परमधाम जाकर के अशरीरी होकर के परमधाम गए और उस निराकारी स्वरूप में स्थित हो जाना। अशरीरी होकर गई आत्मा परमधाम और वहां उस निराकारी स्वरूप में स्थित हो गए। ठीक है। सब शब्द अलग है कि एक है? देही अभिमानी, आत्मा अभिमानी, अव्यक्त स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप, फिर विदेही स्वरूप, अशरीरी और निराकारी। और जब अंतिम समय में कर्म से अतीत यानी कर्म के प्रभाव से भी मुक्त हो गए कि कोई भी विकारी या पतित कर्म मुझे प्रभावित नहीं कर सकता है, उससे इतना, उसको कहते कर्मातीत, जो आज बाबा ने मुरली में कहा। शब्द अलग है ना सब, इसीलिए ध्यान रखने का कि बाबा ये शब्द कब प्रयोग किया, कौन से सेंटेंस के साथ प्रयोग किया, तब आपको मालूम पड़ेगा कि एक नहीं है, लेकिन ये सब अलग अलग स्टेजेस है जिस स्टेजेस से हमें क्रॉस करना है। ठीक है, ठीक है। बीज रूप माना वही, जब परम धाम में निराकारी स्थिति में जब स्थित हो जाते हैं, तो जैसे बीज सारे वृक्ष का अंदर में समाया हुआ है, ऐसे जैसे कि सब आत्मा के जो संस्कार है वो मर्ज हो गए, सारे कल्प के जो संस्कार मर्ज हो गए उस बीज के अंदर, तो बीज एकदम भरपूर भरपूरता की अवस्था, क्योंकि सत्युग त्रेता की तो हमारी भरपूरता की स्टेज है ना, तो भरपूरता की अवस्था जिसमें, तो वो है बीज स्वरूप। जैसे पूरा हमारे 84 जन्मों का वृक्ष जैसे उस बीज में समा जाए, वो बीज स्वरूप। और ज्वाला स्वरूप वही कि जब बीज स्वरूप हो करके उस बाबा को याद करते हैं, तब बाबा जैसे सूर्य के समान जो है उसकी शक्ति और सकाश जो मिलती है उससे मेरे पूर्व विकर्म दग्ध होते और आत्मा का शुद्धिकरण होता है, वो ज्वाला स्वरूप। ठीक है, अच्छा, ओम शांति।
बाबा सबसे